भो मित्रगणाः आगच्छन्तु। अधुना पठामि संस्कृतम् इति कार्यक्रमं प्रारम्भं करोमि। शृण्वन्तु। अर्थात् हे मित्रगण, आप आओ, आगच्छन्तु, आप सब आओ, अधुना अर्थात् अब पठामि संस्कृतम् कार्यक्रम आरंभ करते हैं। इसे
शृण्वन्तु,
आप सब लोग सुनिए। यहाँ दो शब्द आए हैं, आगच्छन्तु और
शृण्वन्तु।
जैसा हम लकार पढ़ रहे हैं, जिनसे हमें क्रियाओं के अलग अलग अर्थ बोध होते हैं, तो आगच्छन्तु यह क्रिया का रूप है कि आप आओ, अर्थात कुछ काम है जो आपको करने के लिए कहा गया है, एक अनुरोध समझ करके या एक आज्ञा समझ करके आपको इसको करना है, तो इसे हम कहेंगे लोट लकार। और दूसरा होता है कि वो थोड़ा सा उपदेश पर होता है कि आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे जाना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वैसे बोलना चाहिए, ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए इत्यादि, उसे हम कहते हैं विधिलिंग लकार। तो आज हमारे लिए श्री विशाल शर्मा जी ने लोट लकार के और विधिलिंग के वाक्यों को समाहित करते हुए एक पाठ भेजा है, तो उसको देखते हैं। अहम् सत्यम् वदामि, त्वमपि सत्यम् वद, या त्वमपि सत्यम् एव वद। मैं सच बोलती हूँ, तुम भी सच बोलो, या तुम भी सच ही बोलो। ये आपको एक अनुरोध हो गया कि सच ही बोलो, ये हो गया लोट लकार।
युवाम भोजन मंत्रम वदतम, ये हो गया लोट लकार, वद वदतम वदत। युवाम है तो द्विवचन है, इसलिए हम कहेंगे वदतम।
तुम दोनों भोजन मंत्रों का पाठ करो या भोजन मंत्र कहो। तो एक वचन होता तो हम कहते वद, जैसे त्वमपि सत्यम वद, लेकिन द्विवचन है तो जैसे ही हमने कर्ता में द्विवचन का प्रयोग किया युवाम, तो क्रिया में भी द्विवचन का रूप लगा
वदतम।
युवाम भोजन मंत्रम अपि
वदतम। लेकिन अगर विधिलिंग लकार कहना हो तो हम कहेंगे युवाम भोजन मंत्रम वदेतम, अर्थात तुम दोनों को जो भोजन के लिए मंत्र होते हैं उन्हें कहना चाहिए। वदेहे वदेतम वदेत, ये तीन हो गए मध्यम पुरुष के रूप विधिलिंग के। तो ये विधिलिंग हो गया।
अब दो वाक्य और लिखते हैं, त्वम याचकेभ्यः दानम कुरु, और दूसरा वाक्य है त्वम याचकेभ्यः दानम कुर्याः। लोट लकार और विधिलिंग लकार का फर्क हो गया। त्वम याचकेभ्यः दानम कुरु, अर्थात कोई याचक आया हुआ है तो तुम उसे दान करो, और त्वम याचकेभ्यः दानम कुर्याः, अर्थात अगर कोई याचक आता है या आया हुआ है तो तुम्हें उसे दान करना चाहिए। फर्क हो गया ना, एक में तो कहा गया है कि करो, सीधे सीधे एक्शन की बात हो गई, दूसरे में उपदेश है या समझाया गया है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। कोई याचक आ गया तो उसे दान करना चाहिए, त्वम याचकेभ्यम दानम कुर्याः। इसी प्रकार और भी छोटे छोटे वाक्य हैं, वयम स्वपुस्तकानि पठेम, अर्थात हम लोगों को अपनी अपनी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। पठेम, वयम स्वच्छम जलम पिबेम, हमें स्वच्छ पानी पीना चाहिए। तो ये दोनों वयम शब्द के साथ हैं, तो बहुवचन का शब्द है वयम, कर्ता, और पिबेम पीना चाहिए, पठेम पढ़ना चाहिए, ये सारे विधिलिंग के रूप हो गए। त्वम अध्ययनम कुरु, तुम पढ़ाई करो, त्वम देशभक्त भव, तुम देशभक्त बनो, त्वम प्रातः भ्रमणम कुरु, तुम सुबह भ्रमण करो, छात्राः भोजनम कुर्वन्तु, सारे छात्र सारे छात्रगण भोजन करो, ये लोट लकार हो गया। ते प्रश्नान पृच्छन्तु, वे सारे प्रश्न पूछें, ये भी लोट लकार हो गया। लेकिन सर्वे सत्यम वदेयुः, ये विधिलिंग लकार हो गया। अगला वाक्य देखते हैं, अहम गच्छेयम्, मुझे जाना चाहिए। रामः श्यामश्च विद्याध्ययनम् कुर्याताम्, राम और श्याम को विद्याध्ययन करना चाहिए। कुर्याताम द्विवचन के कारण कुर्याताम रूप हो गया। रामः मंदम मंदम वदेत, राम को धीरे धीरे बोलना चाहिए। सहा विदुषः सम्मानम कुर्यात, उसे विद्वानों का सम्मान करना चाहिए। ये सारे हो गए विधिलिंग लकार के स्वरूप। त्वम आज्ञाम विना अत्र प्रवेशम न कुर्याः, तुम्हें आज्ञा के बिना यहाँ प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये भी विधिलिंग हो गया। तौ जलम पिबताम, उन दोनों को पानी पीना चाहिए, ये भी विधिलिंग हो गया। तो एक बार हम विधिलिंग लकार के लिए जो सारे के सारे नौ रूप होंगे उन्हें देखते हैं। पिब शब्द को लेते हैं और इसे देखते हैं, पिबेयम पिबेव पिबेम, ये हो गया उत्तम पुरुष के तीन वचनों का रूप। पिबेयम पिबेव पिबेम, पिबेहे पिबेतम पिबेत, पिबेत पिबेताम पिबेयन। इसी प्रकार त्वम दुर्जनेन सह न तिष्ठेहे, तुम्हें दुर्जनों के साथ नहीं रहना चाहिए। त्वम पाठम स्मरेहे, तुम्हें अपना पाठ याद रखना चाहिए। तो जब एक वचन मध्यम पुरुष हो तो उसके स्वरूप ऐसे हो जाते हैं, पिबेहे स्मरेहे पठेहे तिष्ठेहे इत्यादि। तो मित्रों, इस पाठ के लिए हम विशाल शर्मा का आभार मानते हैं और आशा करते हैं कि वे हमें और भी पाठ भेजते रहेंगे। और अब हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले एक श्लोक पढ़ेंगे, जैसा हम कई बार करते हैं। आओ सुनते हैं। अवज्ञा त्रुटितं प्रेमः नवीकर्तुं क ईश्वरः, संधिं न याति स्फुटितं लाक्षालेपेन मौक्तिकम्। अर्थ इसका बहुत सरल है। अवज्ञा त्रुटितं प्रेमः, जो प्रेम होता है उसमें अगर अवज्ञा आ जाए, उपेक्षा आ जाए, एक दूसरे का ख्याल नहीं रखा जाए, एक दूसरे की उपेक्षा की जाए, अवज्ञा की जाए, उसकी बातों का कोई सम्मान ना किया जाए, तो इस कारण अगर प्रेम टूट गया, अवज्ञा त्रुटितम प्रेमः, ऐसी अवज्ञा के कारण जो प्रेम टूट गया हो, तो फिर नवीकर्तुं क ईश्वरः, उसे वापस नया बनाने में क ईश्वरः, कौन समर्थ है, अर्थात कोई समर्थ नहीं है, उसका फिर वापस नवीकरण नहीं किया जा सकता है। जो एक बार उपेक्षा के कारण टूट गया हो, उसे दोबारा संभालना, उसे दोबारा प्रस्थापित करना, उसे दोबारा नवीकरण करना बहुत ही कठिन है, बल्कि असंभव है। इसलिए अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो आवश्यक है कि उसकी उपेक्षा ना करें, उसकी अवज्ञा ना करें, उसकी बातों का ख्याल करें और उसके सम्मुख हम ये प्रकट करें कि हम उनका ख्याल रखते हैं। यही बात हमारे माता पिता के साथ लागू होती है, हमारे बंधु और सखा मित्र और सहेलियों के लिए लागू होती है, सबके लिए लागू होती है। जिन जिन के साथ हम प्रेम करते हैं, प्रेम भाव रखते हैं, उनकी हमें उपेक्षा या अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह प्रेम अगर एक बार टूट गया तो वह फिर जोड़ा नहीं जा सकता है। और अगली पंक्ति में एक उदाहरण देकर के इसको समझाया है कि संधिम न याति स्फुटितम लाक्षालेपे न मौक्तिकम। मौक्तिक मणि अगर एक बार टूट गया, स्फुटितम टूट गया, तो फिर लाक्षालेप करने से अर्थात उसके ऊपर लाख लगा करके अगर हम उसको जोड़ने का प्रयास करें तो भी वह संधिम न याति, वह दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता है। तो इसीलिए हम प्रयास करें कि जिनके साथ हम प्रेम भाव रखते हैं उनकी हम अवज्ञा ना करें। तो मित्रों, इसी श्लोक के साथ हम आज का पठामी संस्कृतम कार्यक्रम समाप्त करते हैं। तुम सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो।